नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने सभी तरह के आतंकवाद की रोकथाम और आतंकी गतिविधियों को धन मुहैया कराने के खिलाफ नई राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति और रणनीति हार का अनावरण किया। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयुक्तों का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित होगा। झारखंड के चतरा जिले में रांची से दिल्ली आ रहा एक एयर एम्बुलेंस विमान दुर्घटनाग्रस्त। विमान में सवार सभी 7 लोगों की मौत। इसराइल में भारत के राजदूत जेपी सिंह ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ भारत और इसराइल एकमत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसराइल के आगामी दौरे को बताया ऐतिहासिक। ड्रग माफिया की हत्या के बाद भड़की हिंसा में मैक्सिकन नेशनल गार्ड के 25 सैनिकों की मृत्यु। और आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेट विश्व कप सुपर 8 मुकाबले में मुंबई में वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे को 107 रन से हराया। और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने सभी तरह के आतंकवाद की रोकथाम और आतंकी गतिविधियों को धन मुहैया कराने के खिलाफ नई राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति और रणनीति प्रहार का अनावरण किया। ये रणनीति आतंकवाद के बढ़ते खतरों से निपटने के लिए एक व्यापक व्यवस्था प्रस्तुत करती है। इसमें आतंकवाद को रोकने और उसका मुकाबला करने के लिए सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया गया है। मंत्रालय ने बताया कि हालांकि खतरों का स्वरूप लगातार बदल रहा है और नई चुनौतियां सामने आ रही हैं, फिर भी देश सभी तरह के आतंकवाद का विरोध करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयुक्तों का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित होगा। ये गोलमेज सम्मेलन 27 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद हो रहा है। पिछला सम्मेलन वर्ष 1999 में हुआ था। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। इस अवसर पर निर्वाचन आयुक्त डॉ सुखबीर सिंह संधु और डॉ विवेक जोशी उपस्थित रहेंगे। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य निर्वाचन आयुक्त अपने कानूनी और तकनीकी विशेषज्ञों के साथ सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके अलावा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारी भी सम्मेलन में शामिल होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन निर्वाचन आयोग के कामकाज के कुशल कार्यान्वयन के लिए एक मंच प्रदान करेगा।
इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य निर्वाचन प्रक्रियाओं और व्यवस्थाओं के संबंध में अपने अपने कानूनी प्रारूप के तहत भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयुक्तों के कामकाज में तालमेल को बढ़ावा देना है। यह सम्मेलन रचनात्मक विचारों के आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करेगा, साथ ही चुनाव प्रबंधन में सहकारी संघवाद की भावना को सुदृढ़ करेगा। दिन भर चलने वाले इस सम्मेलन के दौरान निर्वाचन प्रक्रियाओं को मजबूत करने के अलावा प्रौद्योगिकी, ईवीएम और मतदाता सूचियों को साझा करने पर भी चर्चा होगी। वहीं हाल ही में शुरू किए गए ईसीआई नेट डिजिटल प्लेटफॉर्म और निर्वाचन सेवाओं को सुव्यवस्थित करने में इसकी परिवर्तनकारी क्षमता पर प्रस्तुति दी जाएगी। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के इसराइल यात्रा पर कल रवाना होंगे। तेल अवीव में प्रधानमंत्री इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के साथ व्यापक वार्ता करेंगे। इसके बाद श्री मोदी यरूशलम में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। उधर इसराइल में भारत के राजदूत जेपी सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसराइल यात्रा ऐतिहासिक सिद्ध होगी। यरूशलम में आकाशवाणी समाचार से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से वार्ता के अलावा श्री मोदी इसराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग से भी मुलाकात करेंगे और इसराइल की संसद कंसनेट को संबोधित करेंगे।
प्रधानमंत्री मोदी इसराइल की संसद क्नेसेट को संबोधित करेंगे। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा दिया जाने वाला पहला संबोधन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्नेसेट को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाषण होगा। क्नेसेट के माध्यम से प्रधानमंत्री इसराइल और साथ ही भारतीय नागरिकों को भी संबोधित करेंगे। मुझे लगता है कि पूरा इसराइल इसे देखेगा और उनका भाषण सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों पर होगा।
उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2017 में इसराइल की यात्रा की थी, तब उन्होंने श्री नेतन्याहू के साथ मिलकर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की नींव रखी थी। श्री सिंह ने कहा कि अब समय आ गया है कि उस रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाया जाए। उन्होंने कहा कि दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच वार्ता के बाद कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री सिंह ने कहा कि भारत और इसराइल की आतंकवाद के विरुद्ध कड़ी नीति है।
ऑन टेररिज्म फ्रंट इंडियाज पॉलिसी इज वेरी क्लियर।
आतंकवाद के मुद्दे पर भारत की नीति बिल्कुल स्पष्ट है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कह चुके हैं कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी नीति जीरो टॉलरेंस की है। मुझे लगता है कि इस मामले में भारत और इसराइल दोनों एक ही राह पर हैं। और जब भी कोई संकट आया है तो दोनों देश एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़े रहे हैं।
इधर भारत में इसराइल के राजदूत रोएन अजार ने कहा है कि इसराइल इस सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए उत्साहित है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी की यात्रा के दौरान दोनों देश निर्णायक रूप से आगे बढ़ेंगे। इसराइल के राजदूत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भारत और इसराइल सुरक्षा समझौतों को अद्यतन करके रक्षा साझेदारी को और मजबूत करेंगे।
भारत और इसराइल कई वर्षों से मिलकर काम कर रहे हैं और हमें अपने मजबूत रिश्ते पर गर्व है, लेकिन दुनिया तेजी से बदल रही है और चुनौतियां भी बढ़ती जा रही है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए हमें अपने रक्षा संबंधों को और मजबूत करना होगा तथा अपने सुरक्षा समझौतों को नया रूप देना होगा। इससे हमें अपनी परियोजनाओं में साथ काम करने और तकनीकी समाधान विकसित करने में मदद मिलेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसराइल यात्रा को कवर करने गए हमारे विशेष संवाददाता धीरज काकड़िया की यरूशलम से पेश है ये खास रिपोर्ट।
इसराइल में भारतीय समुदाय एक जीवंत और विविध समूह है, जिसमें लगभग 85,000 यहूदी भारतीय मूल के लोग और लगभग 18,000 से 20,000 भारतीय नागरिक विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं। इसराइल में भारतीय यहूदी समुदाय का इतिहास कई दशकों पुराना है। इनमें से अधिकांश लोग 1950 और 1960 के दशक में भारत से इसराइल चले आए थे। जो ज्यूस लोग यहूदी लोग भारत से यहां आए हैं वो भारत की अपनी अच्छी यादों को साथ में लेकर आए हैं। इसराइल के समाज में वे पूरी तरह से यहां एकीकृत हो गए हैं और विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान भी कर रहे हैं। इसराइल में जो भारतीय नागरिक हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में कार्यरत है, जिसमें हेल्थ देखभालकर्ता के रूप में, केयर गिवर्स में, डायमंड के ट्रेडर्स हैं, आईटी पेशेवर में भी बहुत लोग हैं और यहाँ छात्र अभ्यास के लिए भी आते हैं। इसराइल की अर्थव्यवस्था में ये सब यहूदी और अन्य लोग महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं और देश की सांस्कृतिक विविधता को भी बढ़ावा दे रहे हैं।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इस योजना का दूसरा चरण नीति आयोग द्वारा अवसंरचना संबंधी मंत्रालयों के परामर्श से तैयार किया गया है, जो केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना 2025-30 के जनादेश पर आधारित है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI भारत में ग्रामीण परिवर्तन का एक मजबूत आधार बनती जा रही है। ये केवल तकनीकी उपयोग नहीं बल्कि समावेशी विकास लक्ष्यों के अनुरूप एकीकृत सार्वजनिक अवसंरचना के रूप में आकार ले रहा है।
सेवा वितरण को मजबूत करने के साथ साथ डेटा आधारित शासन में सहयोग कर AI देश में समावेशी ग्रामीण विकास के एक मूलभूत चालक के रूप में उभर रही है। पंचायती राज संस्थाओं, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और कल्याणकारी प्रणालियों में AI का एकीकरण पारदर्शिता, दक्षता, योजना और जमीनी स्तर की भागीदारी को बढ़ा रहा है। सभासार, ई ग्राम स्वराज, ग्राम मनचित्र और AI कोष जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से AI अंतिम छोर तक सेवा वितरण को मजबूत करने के साथ साथ संरचनात्मक असमानताओं को कम कर रहा है। AI विशेष रूप से ग्रामीण, दूरदराज और जनजाति क्षेत्रों में भाषा की पहुंच और समावेशन के विस्तार में भी मुख्य भूमिका निभा रहा है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की जनता को पत्र लिखकर उनसे विकास के सफर में साथ देने की अपील की है। बंगाली और हिंदी में लिखे इस पत्र में प्रधानमंत्री ने वहां के लोगों से अपील की है और राज्य के लिए भाजपा के विकास संबंधी दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया। श्री मोदी ने कहा कि आने वाली पीढ़ी का भविष्य किस राह पर चलेगा, ये राज्य की जनता के सुविचारित निर्णय पर निर्भर करता है। झारखंड के चतरा जिले में सिमरिया के पास एक एयर एम्बुलेंस विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई। विमान रांची से दिल्ली जा रहा था। राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ये जानकारी दी। रेडबर्ड एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित ये विमान शाम 7:11 पर रांची हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से महाराष्ट्र, झारखंड और राजस्थान के 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। राष्ट्रपति आज मुंबई के लोकभवन में पीडी हिंदुजा अस्पताल द्वारा आयोजित राष्ट्रव्यापी अभियान जीवन बचाओ और स्वस्थ भारत बनाओ का उद्घाटन करेंगे। कल वे बुलढाणा जिले के शेगांव में केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का भी उद्घाटन करेंगे। मेक्सिको के जलिस्को प्रांत में ड्रग माफिया की मौत के बाद भड़की हिंसा में नेशनल गार्ड के करीब 25 सैन्य कर्मियों की मौत हो गई है। एल मेंचो के नाम से पहचाने जाने वाले तस्कर नेमिसियो उजग्वेरा सर्वेंट्स की विशेष दल द्वारा हिरासत में लिए जाने के कुछ देर बाद ही मौत हो गई थी, जिसके बाद करीब 20 राज्यों में अशांति फैल गई। बताया जा रहा है कि जलिस्को राज्य के तापलपा कस्बे के बाहर एक सैन्य अभियान में घायल होने के बाद हेलीकॉप्टर में उसकी मौत हुई। अमेरिका ने इस कुख्यात ड्रग्स तस्कर की गिरफ्तारी की सूचना देने पर $1.5 करोड़ के इनाम की घोषणा की थी। जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टल मेक्सिको के सबसे कुख्यात आपराधिक संगठनों में से एक है। एल मेंचो इसी संगठन की अगुवाई करता था और मेक्सिको का सबसे वांछित अपराधी था। सुरक्षा मंत्री उमर गार्सिया हारफोज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को बताया कि विभिन्न हमलों में कार्टेल के 30 सदस्य और एक आम नागरिक की मौत हुई है, जबकि 7 राज्यों में कम से कम 70 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अमरीकी सेना ने कैरिबियाई सागर में कथित ड्रग तस्करों को निशाना बनाते हुए एक और हमला किया है, इसमें 3 लोग मारे गए। मणिपुरी फिल्म बूंग को बाल और पारिवारिक फिल्म श्रेणी में बाफ्टा पुरस्कार मिला है। इस उपलब्धि पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बूंग की पूरी टीम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि पुरस्कार जीतने वाली ये पहली भारतीय फिल्म बन गई है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी बृहस्पतिवार को भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। श्री कार्नी 7 मार्च तक भारत में रहेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत मानी जा रही है। पिछली सरकार के कार्यकाल में तनावपूर्ण संबंधों के बाद कनाडा के किसी नेता की ये पहली आधिकारिक भारत यात्रा है। श्री कार्नी मुंबई में व्यापारिक नेताओं से भेंट करेंगे। 2 मार्च को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के लिए नई दिल्ली पहुंचेंगे। खेलों में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 8 मुकाबले में कल वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे को 107 रन से हरा दिया। मुंबई में वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 17 ओवर और 4 गेंद में केवल 147 रन ही बना सकी। शिमरोन हेटमायर को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। श्रीलंका के पल्लेकेले में आज प्रतियोगिता के सुपर 8 में इंग्लैंड का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज सुबह पंजाब में घना कोहरा छाए रहने की संभावना व्यक्त की है। वहीं उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। विभाग ने बताया है कि इस दौरान गरज, बिजली और तेज हवाएं चलेंगी। असम, मेघालय, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और विदर्भ में भी दिन भर ऐसी ही स्थिति बनी रहने का अनुमान है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुनीश शर्मा।
धन्यवाद फरत। डिजिटल खतरा भी आतंकवाद माना जाएगा, देश की पहली आतंकवाद विरोधी नीति जारी। दैनिक भास्कर सहित सभी अखबारों ने इसे अपनी सुर्खी बनाया है। दैनिक जागरण लिखता है, देश के दुश्मनों के मंसूबों पर करारा प्रहार, चरमपंथी हिंसा रोकने पर केंद्रित है नीति। अमरीका से जंग की आहट, भारत ने ईरान में मौजूद अपने नागरिकों से देश छोड़ने को कहा, यह है वीर अर्जुन की खबर। जबकि देश बंधु के शब्द हैं, ईरान और अमरीका में फिर बढ़ रहा है तनाव, भारतीय दूतावास ने नागरिकों को ईरान से हटने की सलाह दी। पंजाब केसरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के शब्दों को जगह दी है, वित्त मंत्री की बैंकों को फटकार, कहा बंद करें इंश्योरेंस बेचना। झारखंड में विमान हादसे की खबर लगभग सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित की है। लोकसत्ते ने त्योहारों पर विमान किराए में बढ़ोतरी होने को अपनी सुर्खी बनाया है। पत्र कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, त्योहारों में ही क्यों बढ़ जाता है विमान किराया। भारत के आसमान में शुक्र से भी तेज चमकेगा नया धूमकेतु, अप्रैल के पहले सप्ताह में दिख सकता है कुदरत का ये अनोखा नजारा। भारत में दक्षिणी राज्यों से बेहतर दर्शन हो सकेंगे, राजस्थान पत्रिका ने खगोल शीर्षक से ये खबर प्रकाशित की है। जबकि हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर विश्वविद्यालयों में दी जा रही शिक्षा पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र कहता है, विश्वविद्यालयों का काम अमेरिका और यूरोपीय मुल्कों के लिए नौकरों की फौज तैयार करना नहीं है, बल्कि ऐसे ज्ञान का उत्पादन करना है जो हमें रणनीतिक स्वायत्तता दे।
धन्यवाद मुनीश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने नई सभी तरह के आतंकवाद की रोकथाम, आतंकी गतिविधि और धन मुहैया कराने के खिलाफ राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति और रणनीति प्रहार का अनावरण किया। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयुक्तों का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित होगा। इसराइल में भारत के राजदूत जेपी सिंह ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ भारत और इसराइल एकमत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसराइल के आगामी दौरे को बताया ऐतिहासिक। ड्रग माफिया की हत्या के बाद भड़की हिंसा में मैक्सिकन नेशनल गार्ड के 25 सैनिकों की मृत्यु। और आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेट विश्व कप सुपर 8 मुकाबले में मुंबई में वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे को 107 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
इस ऑडियो को पसंद करने के लिए और आगे भेजने के लिए 5 दबाएं। इसका ऑडियो आईडी नंबर आपको SMS कर दिया जाएगा।